समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और हर सुबह हमारे जीवन में लेकर आती है एक नई आशा और उम्मीद की किरण। ऐसे में जब देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब हमारी सशस्त्र सेनाओं ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, हम सभी भारतवासी अपने सैनिकों के शौर्य, पराक्रम, वीरता और वतन परस्ती के सामने नतमस्तक हैं और हम हमारे सैनिकों की वीरता और साहस के लिए सलाम करते हैं। और इस घड़ी में हम सब एकजुट होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर सिर्फ यही कहेंगे,
भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे
well. We salute the brave hearts, the guardians of our nation. We stand tall because of you. We stand proud and grateful today and always. A heartfelt, heartfelt thank you to our soldiers who guard our skies, our seas, our borders with their unmatched courage. Well, a billion prayers they stand behind every soldier. So saluting the fearless hearts of our armed forces.
बिल्कुल, ये समय है हमारे देश की सेनाओं की शौर्य, पराक्रम और जज्बे को सलाम करने का, सेनाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का।
हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है।
और श्रोताओं, इसी के साथ शुरुआत करते हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे की, जो रोज सुबह ताजा तरीन खबरों के साथ देता है आपको वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के सेडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और शगुन आपको भी नमस्कार।
Namaskar Siddharth, namaskar all our listeners. Well, a very warm welcome to all of you, each and every single one of you tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashwani network. Well, this is our daily news magazine program Aaj Savere with Siddharth, of course, and me, Shagun. Well, we'll start with the national and international news that we'll provide you. We'll also be giving you metro city updates, which consist of Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad. And also we'll explore today's history, the historical information related to this day, that is 15th of May. But first, we'll begin with the headlines.
जी हां, नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों की सफलता दर्शाती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और वहां के लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।
Central Consumer Protection Authority has issued notices to Amazon India, Flipkart, Ubuy India, Etsy, the flag company and the flag corporation over the sale of Pakistani flags and related merchandise. In a social media post, Union Consumer Affairs Minister Prahlad Joshi said such insensitivity will not be tolerated. He said e-commerce platforms have been directed to immediately remove all such content and adhere to national laws.
सरकार ने उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस इकाई को प्रतिमाह 20,000 वेफर्स के लिए डिजाइन किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि 37 अरब रूपए के निवेश वाली इस इकाई की डिजाइन आउटपुट क्षमता 3,60,00,000 यूनिट प्रतिमाह है।
ये प्लांट लगेगा, इसमें 20,000 वेफर पर मंथ की कैपेसिटी होगी और जो चिप्स इससे बन के निकलेगी उसकी कैपेसिटी है 36 मिलियन चिप्स पर मंथ, विच इज 3.6 करोड़ चिप्स पर मंथ। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, इसमें वेफर लेवल पैकेजिंग का एक टेक्नोलॉजी होता है वो इसमें लगेगा, विच मीन्स एंटायर वेफर के साथ सबस्ट्रेट को जोड़कर कंप्लीट उसकी एडवांस्ड पैकेजिंग का। 2022 में जब से प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया 1 जनवरी 2022, उसके बाद से अब तक का ये 6th प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट सेमीकंडक्टर मिशन इज, आपको ध्यान होगा टैलेंट डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा फोकस था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कंप्लीट पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे राइट फ्रॉम डे वन।
जी हाँ शगुन, ये खबर बहुत अच्छी है और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए हमें अक्सर दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इस छठी इकाई के शुरू होने के बाद भारत में सेमीकंडक्टर्स को लेकर एक क्रांति आने वाली है और हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हम अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे।
ऑल्सो सेमीकंडक्टर्स, सिद्धार्थ, सेमीकंडक्टर्स आर वेरी क्रूशियल कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज दे कंट्रोल एंड मैनेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन डिवाइसेज एंड ऑल्सो दे हैव, आई शुड टेल आवर लिसनर्स, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम पावरिंग एवरीडे डिवाइसेज लाइक यू नो स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स एंड ऑल्सो एनेबलिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज लाइक सोलर सेल्स एंड ऑल्सो AI systems, very very crucial this step.
बिल्कुल, तो semiconductors के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता है और ये एक बहुत ही positive खबर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जी, in Jammu and Kashmir, an encounter has broken out between terrorists and security forces at Nader in Thral area of Avantipura in Pulwama district early this morning. A police spokesperson in a social media post said, J&K police and other security agencies are on the job. Details are awaited.
ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता ने पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। इस ऑपरेशन के दौरान सेना की वीरता और रणनीतिक प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि इस उल्लेखनीय उपलब्धि के प्रति सम्मान में आज शाम जम्मू में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। सेनाओं के प्रति समर्थन और सराहना व्यक्त करने के लिए जम्मू कश्मीर भाजपा महासचिव अशोक कौल ने नागरिकों से अधिक संख्या में तिरंगा रैली में शामिल होने की अपील की है। ये यात्रा भारतीय सेना के प्रति लोगों के गहरे सम्मान और अटूट समर्थन का प्रतीक है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए जम्मू कश्मीर में 25 मई तक जिला, मंडल, वार्ड स्तरों पर भी तिरंगा यात्राएं आयोजित की जाएंगी।
Yes, we honor their valor, their dedication and their devotion to our nation, Siddharth.
बिल्कुल, और अब ये पूरे देश में हो रहा है। Yes. और अच्छी खबरें भी आ रही हैं शगुन। कल ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि किस तरह से जब हमारे ये जवान एक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी ढाबे में रुके तो उस ढाबे वाले ने उनसे कोई पैसे नहीं लिए और जब उन्होंने जबरदस्ती दिया तो उन्होंने खड़े होकर उन सब जवानों के लिए तालियां बजाई, उनको पानी की बॉटल्स दी और हर किसी ने उन जवानों को सलाम किया, सैल्यूट किया। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अपने जवानों की हौसला अफजाई कर सकते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद व्यक्त कर सकते हैं।
Yeah, that's what civilians can do, the citizens can do. These small things, they can mean a lot to them. For our heroes, well, they motivate us, they inspire us for putting nation first.
जी.
Well, moving on, the government has debunked a video being circulated over social media claiming that of an Indian Army soldier accusing the central government of the Pahalgam terrorist attack. The fact-check unit of the Press Information Bureau said the soldier seen in the video is a deserter and is not present at his duties since March this year, nor in contact with his family. The government urged people to please stay vigilant and do not fall for such videos.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने ऐलान किया है कि उसने तुर्की के इनोनी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन MOU को रद्द कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से JNU ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि JNU ने ये निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों को देखते हुए लिया है।
As we celebrate the success of Operation Sindhu, the nation salutes the valor of the Indian soldiers. As a tribute to the armed forces, Akashvani News brings in a special series. Today, we remember Paramveer Chakra Awardee Captain Vikram Batra, who made supreme sacrifice during the Kargil War.
During the Kargil War, Captain Batra's unit was tasked with capturing point 4875, a strategically important mountain peak in the Dras subsector. On the night of 7th July 1999, despite adverse weather conditions, Captain Batra advanced to capture point 4875. Leading from the front, he rallied his men and pressed on the attack and achieved a near impossible military task in the face of heavy enemy fire. Captain Batra's bravery led to India's capture of point 4875, but sadly he succumbed to his injuries. One of his radio messages during the war, "Ye Dil Mange Mor," later on became the catch line for the Kargil War. The inspiring words reverberates even today.
Our radio said, and one of the Pakistani soldiers or officer, whosoever it was, he said me, my code name was Shesha. "Oh Shesha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time." And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success can allow us. "Ye Dil Mange Mor." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps.
Captain Bikram Batra's bravery, camaraderie and devotion to his duty were extraordinary, which has important place in the annals of Indian military history. He was awarded India's highest military decoration, Paramveer Chakra, posthumously. The nation salutes his courage, valor and sacrifice. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
Jihan, Captain विक्रम बत्रा ने जिस तरह से अपनी वीरता और शौर्य दिखाई कारगिल के युद्ध में, वो अपने आप में अद्वितीय है और इसके लिए उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और आपने देखा होगा कि नोएडा के पास कैप्टन विक्रम बत्रा मार्ग भी है।
जी बिल्कुल, यू हैव राइटली सेड एन अद्वितीय, दिस वर्ड दैट यू मेंशनड, वेल देयर सर्विस हिज सैक्रिफाइस, unwavering courage is what inspires us, as you said, Siddharth, very rightly said. The National Human Rights Commission, NHRC, has invited entries for its 11th annual competition for short films on human rights. NHRC, in a statement, said that the films may be in English or any Indian language with subtitles in English. The duration of the short film should be a minimum of 3 minutes and a maximum of 10 minutes. The last date to receive the entries is 31st August this year. The short films can be sent at nhrcshortfilm@gmail.com. NHRC, then shortfilm@gmail.com.
और अब कुछ खेल खबरों पर नजर डालते हैं। बैंकॉक में थाईलैंड बैडमिंटन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय खिलाड़ी अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। पुरुष सिंगल्स में थारून मन्नेपल्ली का सामना डेनमार्क के एंडरसन एंटोनसेन से होगा। महिला सिंगल्स में भारत की शीर्ष खिलाड़ी मालविका बंसोड, उन्नति हुडा और आकर्षि कश्यप अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी।
Yes, another sports update I have, Siddharth. In Bihar, the curtains for Khelo India Youth Games will come down today. The grand closing ceremony will be held at the Pataliputra Sports Complex in Kankarbagh, Patna at 6:30 p.m. The Youth Games had commenced on 4th of this month. Maharashtra leads the medal tally with 149 medals, including 56 gold and 45 silver. Haryana made a strong showing yesterday, winning 35 gold and 26 silver to secure the second position with a total of 107 medals. Rajasthan is in third place with 55 medals, including 22 gold. We have more on this from our correspondent.
Maharashtra, Rajasthan and Gujarat dominated the initial days of the Khelo India Youth Games, but the final phase is turning out to belong to Haryana. Yesterday, Haryana's athletes delivered a stellar performance in weightlifting, boxing and athletics, winning a series of medals and overtaking Rajasthan to move into second place. Athletes from Manipur, Jharkhand and Bihar are also making a strong impression. Manipur has secured 7 medals in the martial art Thangta. Jharkhand claimed gold in the boys' football final by defeating Odisha. Bihar's Khushi Yadav won a gold medal in the 2000-meter steeplechase, and the state added 2 more golds in Thangta, climbing up the medal tally. The colourful closing ceremony is set to be attended by Union Minister of State for Youth Affairs and Sports, Raksha Nikhil Khadse, Bihar's Deputy Chief Minister, Samrat Chaudhary, and several other dignitaries. With Dharmendra Kumar Rai's report from Patna, Manik Sharma, Akashvani News.
तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में वक्त हो चला है मेट्रो न्यूज का। सबसे पहले चेन्नई के समाचारों के साथ हैं शगुन।
यस सिद्धार्थ, IIT Madras, the Energy Consortium, is partnering with Energy Systems Catapult, a leading UK government-backed innovation centre, supporting the transition to a net-zero energy system and to work on energy innovation and sustainability. The partnership opens new opportunities for cross-border knowledge exchange, applied research and commercialisation of clean energy technologies. The Catapult Network fosters collaboration between industry, government, research organizations, and many others to transform great ideas into valuable products and services. Over to you, Siddharth.
जी हाँ, रुक करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का. दिल्ली सरकार का आर्काइव्स विभाग एक अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहा है, जो दिल्ली की ऐतिहासिक समग्र विरासत को प्रदर्शित करेगी. इसके अंतर्गत दिल्ली के ऐतिहासिक दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड्स और साहित्य से संबंधित सामग्री को प्रदर्शित किया जाएगा. हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये प्रदर्शनी दिल्ली के समृद्ध इतिहास के बारे में जनता को जागरूक करेगी.
Yes, focusing now on Bengaluru, the Bangalore Electricity Supply Company, BESCOM, BESCOM, will launch a digital portal to enhance efficiency in the consumer grievance redressal process. The Managing Director of BESCOM, Dr. N. Shivashankar, has announced that the new portal facility for the electricity consumers will improve transparency, strengthen consumer rights, and improve accountability. Once the portal starts functioning, the consumers can escalate their complaints to Karnataka Electricity Regulatory Commission. Such grievances that are not redressed within the stipulated timeline can be uploaded onto the portal for necessary action by Karnataka Electricity Regulatory Commission.
और अब रुख करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के समाचारों का. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दहसील ईस्ट चौकाशी गांव के बीच मुंबई मेट्रो लाइन 9 के पहले चरण के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई. कल निरीक्षण के बाद काशी गांव में पत्रकारों से बात करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि मेट्रो लाइन तकनीकी परीक्षण के अंतिम चरण में है और जल्दी ही इसे यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा. तो ये एक बड़ी खबर है मुंबई वासियों के लिए. और अब हैदराबाद मेट्रो की खबरों के साथ हैं शगुन.
Yes, Siddharth, focusing on Hyderabad now. Miss World contestants have explored the Kakatiya culture and visited the Warangal Fort. The iconic Thousand Pillars Temple, testaments to the architectural brilliance and sculptural mastery of the era in Warangal in Telangana last evening. As part of the Telangana Zarurana campaign, 22 contestants from across the American continent visited Hanumkonda. The contestants participated in Bathukama celebrations with local women singing traditional songs before touring the heritage sites there.
और अब रुक करते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता के समाचारों का. एक अच्छी खबर कोलकाता के उन लोगों के लिए जो सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल कोलकाता के न्यू टाउन में विश्व स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी मनोरंजन और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है. विश्व आंगन नाम का ये केंद्र 25 एकड़ भूमि पर बनने वाला है. तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार. श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर सिद्धार्थ और शगुन के साथ. इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:48 हो चुके हैं. आप जानते हैं आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है. और सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की. राष्ट्रीय राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मुंबई की बात करें तो आज दोपहर या शाम के समय गरज के साथ, जी हां, बौछारें पड़ने की संभावना है. आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. और कोलकाता का रुख करें तो वहां आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. वहां भी बिजली चमकने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से.
Yes, Siddharth, first I'm going to talk about Chennai. It is expected to have generally cloudy sky there. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Now talking about Bengaluru, it is expected to have partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum it will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or even thunder showers. The temperature will hover between minimum of 24 degrees and maximum of 36 degrees Celsius.
बिल्कुल, तो आज ज्यादातर मेट्रोज में जो है आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाले हैं। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब समय है इतिहास के पन्नों में दर्ज उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। और सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की। हर साल ये दिन 15 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परिवार के महत्व को समझते हुए 1983 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की और इसके बाद इसकी शुरुआत हुई। परिवार हमारी ताकत है, ये हमें एक दूसरे के लिए प्यार करना और जीना सिखाता है शगुन। लेकिन ये परिवार सिर्फ घर में ही नहीं होता है बल्कि पूरा देश और हमारा समाज एक परिवार के रूप में रहते हैं। परिवार को लेकर सबसे बड़ा त्याग हमारी सशस्त्र सेनाओं के जवान करते हैं। जब हम अपने घरों में परिवार के साथ खुशियां मना रहे होते हैं तो वो घरों से दूर सरहद पर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे होते हैं।
सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है।
भारत माता,
माथे पे तिलक जय हिंद लगाओ, मेरी निशानी है।
Well, this song, it definitely captures the emotion here, Siddharth, that you were also talking about. Well, yes, for soldiers, nation first and the larger family first, the nation first always, as we say, a billion prayers. Well, they stand behind every soldier. So, because of their unwavering courage, well, their family's blessings and their prayers, they stand fearless as the borders and they guard our skies, they guide our seas, they are there for us, the nation first, always for them.
बिल्कुल, आपने राष्ट्र प्रथम की बात को कहा शगुन। और ऐसे में जब आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है तो हम तो अपने सुनने वालों से यही कहेंगे कि इस वक्त आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, एक बार हाथ जोड़कर एक प्रार्थना हमारे उन सैनिकों के नाम जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से इस देश का इतिहास लिखा है, एक नई इबारत लिखी है। और सैनिकों के हाथ में हथियार तो होते हैं लेकिन उनके दिल में उनका परिवार होता है और ये कहना सही होगा कि उनके लिए पूरा देश एक परिवार है। कई ऐसे मौके आते हैं जब इन सैनिकों को अपने घर की याद सताती है और कई ऐसे मौके भी होते हैं जब परिवार को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है लेकिन वे उनके साथ नहीं बल्कि सरहदों पर होते हैं।
संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
Brilliant. This fills my heart and everybody's hearts with lots of emotion. Obviously, we can just feel it over here, but what goes through their hearts, this song actually captures that. It's like the bravery. Bravery is the armor of the soldiers, and that the every step that they take leads to victory. Each and every step that they take leads to victory.
बिल्कुल शगुनर, तुम्हें पता है कि जब बॉर्डर पे कोई सैनिक पोस्टेड होता है तो आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम उन तक बॉर्डर तक भी पहुंचते हैं और ये बताते हैं कि आप वहां पे रक्षा कर रहे हैं देश की, तो हम महफूज हैं, हम सुरक्षित हैं। और ऐसे में हम देशवासियों की जिम्मेदारी होती है कि इन जवानों के परिवारों को अपना परिवार मानकर चलें और उन्हें निश्चिंत कर सकें कि आप सरहद पर देश की रक्षा कीजिए, हम आपके परिवार का ध्यान रखेंगे।
अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना।
Let me focus on that. The theme for this year's International Day of Families is family-oriented policies for sustainable development towards the Second World Summit for Social Development. Well, yes, let's recognize and support the vital role that families play in achieving sustainable futures for all.
और श्रोताओं, अब याद करते हैं उन महान हस्तियों को जो आज के दिन हमसे मिले या जुदा हुए थे. भारत के पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा को आज हम याद कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है. करियप्पा ने जनरल के रूप में 15 जनवरी 1949 को पदभार संभाला था. इसके बाद से ही 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा. करियप्पा भारत की राजपूत रेजिमेंट से थे और 1953 में करियप्पा सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में उनका सहयोग भारतीय सेना को हमेशा मिलता रहा. और श्रोताओं, आज ही जयंती है देश के महान क्रांतिकारी सुखदेव की, जिन्होंने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को गले लगाया था. उनकी गिनती देश के उन प्रसिद्ध क्रांतिकारियों और शहीदों में होती है जिन्होंने छोटी उम्र में ही देश के लिए शहादत दी. सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, ये तीनों ही देशभक्त क्रांतिकारी आपस में अच्छे मित्र और देश की आजादी के लिए अपना सर्वत्र निछावर कर देने वालों में से थे. 23 मार्च 1931 को भारत के इन तीन वीर नौजवानों को एक साथ फांसी दी गई थी. करते भी गए, कहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने.
ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे. भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे. ए वतन हमको तेरी.
Well, Sukhdev, along with other renowned revolutionaries, started the Naujawan Bharat Sabha at Lahore to prepare the youth for the freedom struggle and end communalism. Sukhdev was at the forefront of several revolutionary activities. And yes, his journey from a privileged upbringing is here for us, the revolutionary acts that he has done. He also educated the youth at the National College in Lahore and inspired them about India's glories. Sukhdev here for you all. We salute the brave heart.
और जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका तीव्र विरोध हुआ. पंजाब में इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे. लाहौर में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व करते समय वहां के डिप्टी सुपरिटेंडेंट स्कॉट के कहने पर सैंडर्स ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला जी घायल हो गए. और इसके बाद इस पर पूरी तीखी प्रतिक्रिया हुई और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार को अपने देश की आवाज पहुंचाने का काम किया था.
Well, he will always be remembered for his spirit of self-sacrifice, heroism and bravery. Well, today we are also remembering Kalindi Charan Panigrahi, noted Odia poet, novelist, story writer, dramatist and also essayist. He is famous for his magnum opus, Matera Manisha, and has been awarded Padma Bhushan and Sahitya Academy Award for his contribution to literature, Odia literature.
और आज ही जयंती है महेंद्रनाथ मुल्ला की, जो भारतीय नौसेना के जाबाज ऑफिसर थे, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया.
है मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तू, खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे.
महेंद्रनाथ मुल्ला भारतीय समुद्रवाहक पोत INS खुखरी के कप्तान थे. भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में पाकिस्तान की एक पनडुब्बी भारतीय जल सीमा में घूम रही थी, जिसे खोजने और नष्ट करने के लिए INS खुखरी और कृपाण पोतों को लगाया गया था. लेकिन दुश्मन की पनडुब्बी हंगोर ने खुखरी को निशाना बना लिया. कप्तान महेंद्रनाथ मुल्ला ने डूबते हुए खुखरी को छोड़ने से मना कर दिया और अंत तक सैनिकों को बचाते रहे. और INS खुखरी के साथ ही महेंद्रनाथ मुल्ला ने भी जल समाधि ले ली.
कोई शम्मा न जली तेरे सिवा, तू ही धारा है मेरी, मेरा किनारा है तू, है मेरी जान, मुझे जान से प्यारा है.
और श्रोताओं, धीरे धीरे घड़ी की सुइयां कह रही कि आपसे विदा ली जाए. चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि समय है हमारे देश की सेनाओं के शौर्य, पराक्रम और जज्बे को सलाम करने का, सेनाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का.
ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके,
Well, yes, we honor their valor, their dedication, their devotion to our motherland. Well, yes, their bravery is their armor. And every step that our heroes take, they motivate us, they inspire us.
और श्रोताओं, इसी के साथ शगुन और सिद्धार्थ को कार्यक्रम आज सवेरे समाप्त करने की अनुमति दीजिए.
नमस्कार.